ओके, ओम शांति। आज का जो विषय है इट इज एक्सपीरियंसिंग मेडिटेशन। हम मेडिटेशन को अनुभव करें। हमें याद आता है कुछ वर्ष पहले हमारी जो सेंटर की दीदी जो थी ना, उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि स्वामी भाई, एक भाई का फोन आया है और वो मेडिटेशन अनुभव करना चाहते हैं। उन्होंने यही शब्द यूज किया, वो मेडिटेशन को अनुभव करना चाहते हैं, तो आप प्लीज आप उनका कोर्स लोगे क्या? मैंने कहा जरूर दीदी, उनका टाइम पूछकर ना आप उनको गार्डन में भेज दीजिए। जहां पर हम नाभी मुंबई में रहते हैं ना, तो बहनें जो होते हैं वो सेंटर पर रहते हैं और भाई लोग गार्डन में रहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो भाई जब पहुंचे तो उन्होंने अपना फिर से वही बात रखा कि मुझे ना मेडिटेशन को एक्सपीरियंस करना है। तो मैंने कहा 1 वीक का कोर्स है, हर दिन 1 घंटा आपको आना है। तो उन्होंने मुझसे पूछा, अच्छा बताइए ये 1 हफ्ते के कोर्स में आप क्या कवर करेंगे? तो अपना जो सिलेबस होता है ना, वो मैंने उनको बताया, स्वयं का परिचय, ईश्वर का परिचय, परमात्मा के दिव्य कर्तव्य, जो भी अपना सिलेबस है। तो उन्होंने मुझे कहा, आप अगर बुरा नहीं माने तो मैं एक बात कहूं? तो मैंने कहा बोलिए। बोला सच्ची बात बताऊं, मैंने ये 2 बार आपका राजयोग का मेडिटेशन कर चुका हूं। मैंने कहा अच्छा। तो मैं बस इसलिए मैंने दीदी को विशेष फोन किया था कि मुझे राजयोग का अनुभव करना है। और ये उस समय की बात है जब अपना पीएमटीवी में बिल्कुल पीएमटीवी नहीं होता था, आस्था संस्कार बिल्कुल नहीं था, उस समय की बात है। तो हम ये आप सबके साथ ये शेयर करना चाहेंगे कि क्योंकि आज पीएमटीवी के द्वारा इतना इंफॉर्मेशन आ गया है कि जब भाई बहने मेडिटेशन के लिए आए तो उनको एक्चुअल मेडिटेशन क्या है, आप अपना कोर्स कराते कराते उनको अनुभव कराना बहुत जरूरी है। क्योंकि अक्सर हम लोग मेडिटेशन क्या है, 7वां दिन है तो पहला दिन दूसरा दिन सुनाते सुनाते 7वें दिन तक पहुंचने तक फिर उसको समझ में नहीं आता योग क्या है, राइट? आज का जो टॉपिक है इसको आपको कैसे लेना है ये तो बात अलग है, लेकिन आज हम स्वयं इस राज्यों का अनुभव कैसे करें वो सीखेंगे, और जो अपने बाबा के बच्चे होते हैं नए नए खास, उनको हम कैसे सिखाएंगे वो मेरा लक्ष्य रहेगा। ओके, नाउ व्हाट इज मेडिटेशन? बेसिकली वी ऑल नो इट इज कम फ्रॉम अ वर्ड विच इज कॉल्ड एज मेडिक्योर, एंड मेडिक्योर मीन्स टू हील योरसेल्फ। और आज विशेष हम लोग राजयोग मेडिटेशन पर ज्यादा फोकस करेंगे। ओके, तो व्हाट इज योग? हम सबको पता है, बहुत सिंपल सा शब्द है, योग अर्थात संबंध, योग अर्थात कम्युनिकेशन। और बाबा बहुत प्यार से मुरली में कहते हैं, बच्चे योग करके इसको कठिन मत बताइए, योग अर्थात स्मृति, योग अर्थात याद, योग अर्थात मेमोरी। वी ऑल नो दैट, राइट? अच्छा, योग में 2 बातें बहुत जरूरत है। हम किसी को भी याद करते हैं तो हम सभी योगी बन जाते हैं, है ना? बच्चे टीचर्स को याद कर रहे हैं, माता पिता को याद कर रहे हैं, तो वो भी योगी हैं। वी ऑल नो दैट। तो इसीलिए योग में सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारा योग स्वयं के साथ, मैं कौन हूं, ये हम सबको पता है, कोई नई बात नहीं है, इसे ज्यादा समय नहीं लेंगे। मैं एक शांत स्वरूप, खुशनुमा, शक्तिशाली आत्मा हूं। तो स्वयं के साथ मेरा संबंध, और राजयोग क्या है? रिमेम्बरिंग द सुप्रीम। तो योग का बहुत सिंपल डेफिनेशन है, अपने को आत्मा समझकर उस परमात्मा को याद करना, ठीक है ना? अब बिफोर आई गो टू द स्टेप्स ऑफ राजयोग का मेडिटेशन, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। कुछ समय पहले, मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने पहले, हम लोग एजुकेशन विंग के कैंपेन में थे, और उस कैंपेन में वी वेर ऑल मूविंग टुवर्ड्स पंजाब, हरियाणा, उसको काफी कवर किया। तो हमारी जो टीम लीडर थी, हमारे एजुकेशन विंग के, शिविका बहन जी थी। तो मुझे याद आता है काफी जगह सेशंस जो हो रहे थे ना, चाहे वो पब्लिक प्रोग्राम हो चाहे वो कॉलेजेस हो, तो जहां पर हम और शिविका बहन साथ में थे, तो हमारा था कि उस टॉपिक को प्रेजेंट करना, मेडिटेशन तक आ जाना, और शिविका बहन वॉज डूइंग दैट मेडिटेशन फॉर एवरीबडी। और जब मैंने पहली बार शिविका बहन का मेडिटेशन सुना, तो मैंने पर्सनली बहन जी को कहा, आज मुझे आपका योग कराने की ना विधि बहुत अच्छी लगी। हाँ, जब बहन जी योग कराते थे उन, क्योंकि मेडिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, तो वो करीब 15 से 18 मिनट लेते थे, राइट? मुझे बहुत अच्छा लगा वो। तो अब जब मैंने उनसे सीखा, तो अब मैं जो भाई बहने मेरे सामने होते ना, तो पहला दिन जब आपने आत्मा का परिचय दिया, मन बुद्धि के बारे में बताया, तो इमीडिएटली जैसे मन बुद्धि संस्कार हुआ, ये तो अपना पहला दिन का सिलेबस है, तो इमीडिएटली उनको योग कराओ। तो मैंने शिवेका बहन से जो मुझे आइडिया मिला वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और मैं काफी जगह ये मेडिटेशन मुझे जो पहले नए नए भाई बहने आते ना उनको कराने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जो मैं उनको कराता तो मैं इनको कहता हूं आई जस्ट टेक अराउंड 1 मिनट विथ यू, सिर्फ मैं 1 मिनट आपका टाइम लूंगा और मैं आपको बताऊंगा योग क्या है। तो आज मैं आपको भी मैं योग 1 मिनट में बताता हूं एंड वी विल स्प्लिट अप इंटू 3 पार्ट्स, 20 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स, ठीक है। तो इस 20 सेकेंड्स में जो योग करने की जो फैकल्टी है वो है मन और बुद्धि। हम सबको पता है मन का काम विचार करना है, बुद्धि उसका चित्र निर्माण करती है। तो पहला 20 सेकेंड्स में हम जो करेंगे ना, वी विल गो टू एन आउटवर्ड जर्नी। मैं वही वर्ड्स यूज कर रहा हूं जो शिविका बहन ने मुझे सिखाया, आउटवर्ड जर्नी। तो जब आप पहली बार जो कोई योग कराने योग सीखने के लिए आता ना, तो उनको बोलना आउटवर्ड जर्नी में हम आपके घर चलेंगे, ठीक है। हमारे सामने जो भाई जी बैठे हैं, भाई जी जरा खड़े हो जाएं, कोई भी एक भाई, ओके हाँ भाई जी, थोड़ा जोर से इस प्रश्न का जवाब देना, आपका लौकिक घर किधर है, कहां पे? जानबाद, बिहार। अच्छा बताइए, आपको अपने घर में जाने के लिए कितना समय लगेगा? हाँ यहीं पे, यहां से जाएंगे तो फिर और कहां से, कितना कितना वर्ष? 48 आवर्स। इतनी दूर से आप यहां पर आए हैं, बहुत अच्छा। नहीं लेकिन मैं कैसे जाएंगे, ट्रेन से, फ्लाइट से? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं मन बुद्धि से जाने की बात कर रहा हूं ना। कितना टाइम लेगा, कितना टाइम लेगा जानबाद पहुंचने में? 1 सेकेंड। तो सामने वाले हम बैठे बैठे, बहुत अच्छा आप सही जवाब दिया है। मुंबई में पूछेंगे तो वो कहेंगे स्वामी भाई वो ट्रैफिक पर डिपेंड करता है ना। हमारा कुछ हमारे भरोसा नहीं है, तुमको फिर उनको बताओ, नहीं वो रस्ते से नहीं जाने की बात कर रहे, मन बुद्धि से। तो वो एकदम नहीं होते ना, एकदम जवाब देते वन सेकेंड। और मैंने हर ग्रुप पर ट्राई करके देखा है, इट वर्क्स ब्यूटीफुली। तो एक काम करेंगे हम लोग, पहला 20 सेकेंड्स ना आप लोग सब अपने घर जाना, घर के सामने खड़े होना, धीरे से घर का दरवाजा खोलना, घर में एंट्री करना, घर के सभी दरवाजे और एंट्री करके घर के सभी कमरे देखना, और विशेष अपने घर में अपने फैमिली मेंबर्स को देखना। और आप देखना सामने अगर माता पिता बैठे ना, तो उनको कहना आज आप अपने बच्चों के पास जाना, उनके पास जाकर आप कहना आप जो हो जैसे हो बहुत अच्छे हो, ये आपका योग है। बस ये महसूस करना आप जो हो जैसे हो ईश्वर के बहुत प्यारे बच्चे हो, दैट इज राजयोग, सो सिंपल। बस 20 सेकेंड है, उससे ज्यादा समय नहीं देना, और फिर धीरे से आप वापस आ जाना, ठीक है। चलो हम करते हैं, सभी अपने जहाज को सीधे रखें, आपका जहाज बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, तो मन बुद्धि के द्वारा। अब देखो जो मेडिटेशन करते हैं ना उनकी एकाग्रता बहुत शार्प होती है। तो व्हाट इज एकाग्रता? जैसे मैं कमेंट्री दूंगा वो ध्वनि आपके मन तक पहुंचेगी, आपका बुद्धि वैसा वैसा वैसे चलेगा। बाई चांस आपकी बुद्धि इधर उधर गई, घर में गए तो चलो पड़ोसी को भी ओम शांति करके आती हूं तो गए। बस 20 सेकेंड की मैं बात कर रहा हूं, 20 सेकेंड से 1 सेकेंड में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो जब आप सामने वाले को मेडिटेशन कराते हो ना, स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल सेकेंड्स, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 5 मिनट। नए लोगों को तकलीफ होता है, स्टार्ट विद 20 सेकेंड्स, ठीक है ना। कौन कौन ये मेडिटेशन एकदम मन बुद्धि को एकाग्र होकर अपने लौकिक घर जाएंगे वो जरा हाथ उठाएं। अच्छा, कौन कौन वापस आएंगे वो हाथ उठाएं, वापस आना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो बस मैं जो बोलूंगा वहां पहुंचेगा, आप जाना अपने माता पिता को देखना, मैं जाऊंगा अपने लौकिक घर केरला, कन्नूर। अच्छा भाई जी बताइए, बिहार वाले भाई, मुझे केरला जाने में कितना टाइम लगेगा? नहीं बैठ के बताइए कितना टाइम लगेगा। वाओ, 1 सेकेंड, मन बुद्धि गया, मैं अपना केरला में गया, अपने पूरे परिवार को देखूंगा, अपने लौकिक पिता को देखूंगा, और फिर अब जो हो जैसे हो बाबा के बहुत प्यारे है ना आत्माएं हैं करके मैं वापस आ जाऊंगा, ठीक है। चलिए सीधा बैठेंगे, लेट्स टेक अ वेरी वंडरफुल जर्नी, एक यात्रा पर निकलते हैं, बहुत सुंदर बाह्य यात्रा। आप अपने आप को अपने लौकिक घर के सामने खड़े होते हुए देखिए, धीरे से घर का दरवाजा खोलिए, घर में आप एंट्री कर रहे हैं, आपको घर के सभी कमरे दिखाई दे रहे हैं, और विशेष अपने परिवार सदस्यों को देखिए, लौकिक परिवार। बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से शुरुआत होती है। सभी परिवार के सदस्यों को देखते हुए नजदीक जाकर महसूस करिए, अब जो हो जैसे हो, बहुत विशेष बाबा की आत्माएं हो, बाबा के प्यारे हो। धीरे से वापस आ जाइए। ओम शांति। दैट्स इट। कौन कौन घर में जाके वापस आए वो जरा हाथ उठाएं। सो सिंपल। तुमको समझा, दिस इज योग। सामने वाली आत्मा को समझ में, हाँ अच्छा मैं तो घर गई हूं मैं जाके। अगर बच्चे आपके सामने बैठे ना तो उनको कहना, जाओ घर के माता पिता के पास जाकर मां के चरण स्पर्श करके आओ। यू टेल देम दैट, दैट इज योग। इट्स कनेक्टिविटी, इट्स संबंध। अच्छा, दूसरी यात्रा जो है वो है इनवर्ड यात्रा, आंतरिक यात्रा। ओनली 20 सेकेंड्स। फिर से अपने जहाज को सीधे बिठाए। बाह्य यात्रा बहुत सिंपल और सहज था, अब हम चले आंतरिक यात्रा पर। महसूस करिए आपका ये शरीर एक गाड़ी की तरह और आप ब्रिकुटी के बीच में उस गाड़ी के मालिक। आपका शरीर एक पवित्र मंदिर और आप उस पवित्र मंदिर में विराजमान दिव्य चैतन्य मूर्ति हो। आपका शरीर एक सीप की तरह और आप चमकते हुए मोती। शांत स्वरूप और बहुत शक्तिशाली हो। ओम शांति। दैट्स इट। तो आपने बाह्य यात्रा कराया, आंतरिक यात्रा करा दी, उसको समझ में आएगा, ओके दिस इज योग। और क्योंकि पहला दिन का सेशन है तो आप शायद वो तीसरी यात्रा परमधाम की यात्रा शायद नहीं करा पाएंगे ना, तो उनको कोई कस्टमाइज कराओ। वो जब लिखते हैं ना, मैं किसके लिए मेडिटेशन करने के लिए आया हूं, हेल्थ होगा तो हेल्थ को कस्टमाइज कर दो, बच्चे होंगे तो एग्जाम्स का डर है तो धीरे से, जैसे आज हम सुबह किए थे ना, एग्जाम हॉल पर लेकर जाओ उनको, कस्टमाइज, उसको लगे कि ये योग मेरे लिए अपने लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, सो दिस इज सिंपल मेडिटेशन, राइट। अब हम थोड़ा सा राजयोग पर आते हैं, राइट। राजयोग के तीन स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है जिसको हम कहते हैं कर्म योग। पहला स्टेप इज कर्म योग। नाउ व्हाट इज कर्म योग? हमें याद आता है जब बहुत पहले, मेरे ख्याल से 15-18 वर्ष पहले, जब हम लोग मेडिटेशन सीखने के लिए सेंटर पर जाते थे ना, तो मुझे याद आते थे हमारे वो जो दीदी होते थे ना, पता क्या करते थे, जो भी नए आए ना वो मेडिटेशन कराने के लिए, दीदी क्या करते थे, उनको अगर उनके पास थोड़ा सा समय लग रहा है तो नए भाई बहन को बाबा के कमरे में लेकर जाते थे, बाबा के कमरे के सामने बिठा देते थे और वो शीलू दीदी जी का जो कमेंट्री है वो लगा देते थे और अपना स्टैंडर्ड कमेंट्री। स्टैंडर्ड कमेंट्री क्या था? मैं आत्मा इन आंखों द्वारा देख रही हूं, मैं आत्मा इस मुख द्वारा बोल रही हूं, मैं आत्मा इन कानों द्वारा सुन रही हूं। हाथों द्वारा क्या करती है आत्मा? कर्म करती ना। आजकल कहीं ना कहीं हम लोग ये कमेंट्री नए भाई बहनों को नहीं सुनाते, हमें फिर से उस कमेंट्री पर आना जरूरी है। और भाई बहनों को यह बताना है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेडिटेशन इज, सारे दिन में जो भी मैं कर्म कर रहा हूं इस अवेयरनेस के साथ कर्म करूं कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म कर रहा हूं, नंबर वन। नंबर टू बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम कहते हैं सोल कॉन्शियस तो कैसे पता चलता है आई एम सोल कॉन्शियस? वो आत्मा के साथ गुण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे एक बार मुझे कहीं पर ना कुमारों की भट्टी के लिए बुलाया गया, तो दीदी ने पूछा, स्वामी भाई कुमारों की भट्टी के लिए आप आइए, आप बताइए आपको ये भट्टी कराने के लिए क्या क्या साधन चाहिए। मैंने कहा सबसे पहले तो कुमारों को बुला लीजिए, उनका वो होना बहुत जरूरी है। बोला वो तो आ जाएंगे सब। मैंने कहा बहुत अच्छा। फिर मैंने कहा थोड़ा अगर एलसीडी प्रोजेक्टर है तो लगा देना, मैं लैपटॉप लेकर आऊंगा। दीदी ने कहा और कुछ जरूरत है? मैंने कहा सारे कुमारों को बोलो ना अपने साथ वो दर्पण लेकर आए, दर्पण अर्थात मिरर। बोला दर्पण क्यों? मैंने कहा नहीं, कुमारों को बोल दो। अब जब मैं भट्टी करा रहा था तो सारे कुमार, कुछ कुमार लोग ना इतने बड़े बड़े एकदम दर्पण लेकर आ गए हैं, एकदम पता नहीं स्वामी भाई ने बोला है तो छोटा क्यों करे, एकदम बड़ा बड़ा। मैंने कहा आप सब बैठ जाओ, मैंने कहा अभी काम करते हैं, सभी जो है ना अपना दर्पण को सामने रखो। सबने बराबर रखा। अब मैंने कहा अब मैं एक एक स्वरूप यहां बोलता हूं, आप जो है ना उस स्वरूप बनना और अपना चेहरा देखना कि वो स्वरूप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। राइट ना? आप देखो बहनों को ये बहुत इजी होता है, जब बहनें डांस करते हैं ना तो जो नवरसास होते हैं ना वो नवरसास में आते हैं। अच्छा, भले उनको खुशी नहीं हो रही है, प्यार नहीं हो रहा, लेकिन वो डांस में लेकर आते हैं स्वरूप। अब हमारा तो बाबा कह रहे बच्चे आपका वो है ना रियल धर्म है। तो मैंने सारे कुमारों को कहा अभी करो। अब जब मैं कह रहा हूं मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैंने कुमारों को कहा आप देखो कि आपके चेहरे में वो शांति आ रही कि नहीं आ रही है। इसे कभी कभी भट्टी कराता हूं ना ब्राह्मणों को तो बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी चलता है। कुछ ब्राह्मण जो होते हैं ना वो योग करते हैं, खास भट्टी में मैंने देखा, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप, मैं आत्मा, वाह क्या शक्ति नजर आती है। ये शक्ति स्वरूप है। अब शक्ति का अगर स्वरूप देखना है ना तो किसी मंदिर में जाइए, वाह वो दुर्गा को देखिए क्या शक्ति स्वरूप, दैट इज शक्ति का स्वरूप। अब कुमारों को मैंने एग्जांपल दिया तो सब हंसने लगे। मैंने करो तो एक ने कहा स्वामी भाई मैं आत्मा आनंद स्वरूप, लेकिन मेरा चेहरा देखकर मुझे ही डर लग रहा है। मैंने कहा आप कह रहे हो मैं आत्मा आनंद स्वरूप, तो उसमें आप फीलिंग में आओ ना, आप रट क्यों रहे हो मैं आत्मा आनंद स्वरूप, मैं आत्मा आनंद स्वरूप। और बाबा पिछले सीजन में बोले इतने प्यार से, हर मुरली में बोला बच्चे आपके चेहरे में वो दिखना चाहिए, बस आप वो ट्राई करो ना। और कर्मयोग मतलब एक स्वरूप में रहना, और सारा दिन आपको कुछ भी दिखाई देना तो आपको बाबा और बाबा का ज्ञान नजर आना चाहिए, दैट इज कर्मयोग। दिस इज द फर्स्ट स्टेज, पहले से ऊपर उड़ने की कोशिश नहीं करो। हमारे नए भाई बहन पहले पहले आते हैं सीधे उड़ने की कोशिश करते हैं परमधाम, एकदम स्पीड में जाते हैं, उसी स्पीड से नीचे भी आते हैं, फिर बहुत बार करते हैं कहते नहीं राजयोग बहुत कठिन है। नहीं, बहुत समय तक वो शीलू दीदी का कमेंट्री सुनते रहना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से 3 महीने से लेकर 1 साल तक ये चलते रहना पड़ेगा। जो 14 वर्ष की जो भट्टी बनी थी ना उसका ये प्रोसेस है, अचानक पूरा ज्ञान नहीं मिला, धीरे 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 धीरे। आज दादियां इतना फाउंडेशन क्यों पक्के हैं वो कर्मयोग। कुछ भी देखे ना तो मुझे बाबा और बाबा का ज्ञान नजर आना चाहिए। और हमेशा मैं जो एग्जाम्पल देता हूं हमारे आदरणीय नितिन भाई जी का, जो मुंबई में रहते हैं और बाबा मम्मा की पालना लिए हैं, दादी ब्रिजेंद्र जी के साथ उन्होंने रहे हैं, बहुत नम्रचित भाई जी हैं, इतने पुराने भाई लेकिन इतने नम्रचित, कभी स्टेज में नहीं आएंगे। जितना समय मैं भाई जी के साथ रहा तो मैंने महसूस किया व्हाट इज कर्मयोग। जैसे मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल, मुझे बहुत अच्छा लगता है हमेशा मैं शेयर करता हूं। एक दिन मैं उनके साथ बैठा था तो उन्होंने कहा स्वामी भाई जरा स्वदर्शन चक्र फिराओ, तो मैं बैठ गया, सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम, सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम। बोला स्वदर्शन चक्र फिराओ ना स्वामी भाई, मैंने कहा कर रहा हूं ना भाई साहब, सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम। बोला स्वदर्शन चक्र फिराओ मतलब फैन को ऑन करो, तो कभी नहीं कहेंगे फैन को ऑन करो, कहेंगे स्वदर्शन चक्र फिराओ। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कर्मयोग, राइट ना? एक बार वो मेगा प्रोग्राम चल रहा था तो फील्ड में सेवा चल रही थी जहां पे प्रोग्राम हो रहा था, उनने मुझे बुलाया और कहा स्वामी भाई जरा 84 जन्मों को लेकर आइए। मैंने कहा भाई साहब क्या चाहिए? बोला सीडी को लेकर आओ, सीडी को लेकर आओ। तो कभी वो सीडी शब्द यूज ही नहीं करते, वो कहेंगे 84 जन्म। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कर्मयोग। एक बार वो मीटिंग में बैठे थे तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा स्वामी भाई मीटिंग चालू हो रही है, आप एक काम करिए सच्चा योगी जीवन को लेकर आइए। मैंने कहा भाई साहब क्या चाहिए? मुरली चाहिए, टोली चाहिए, सौगात चाहिए, क्या चाहिए? बोला कुर्सी को लेकर आओ, कुर्सी को लेकर आओ, है ना? सच्चा योगी जीवन के 4 स्तंभ, कुर्सी के 4 स्तंभ। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कर्मयोग। एक दिन कहीं जाना था तो ट्रेन पकड़नी थी तो मुझे बुलाया, कहा स्वामी भाई ट्रेन छूट जाएगी, संगम युग को लेकर आओ। मैंने कहा विचार सागर मंथन करेंगे तो सचमुच ट्रेन छूट जाएगी। तो उनके साथ एक छोटे भाई थे हरीश भाई, मैंने उनके पास जाकर कहा भाई साहब कह रहे ट्रेन छूट जाएगी संगम युग को लेकर आओ, क्या चाहिए? बोला टैक्सी को बुलाओ, टैक्सी को बुलाओ। मैंने कहा टैक्सी संगम युग कैसे होता है? टैक्सी में बैठे और ट्रेन जब सेटल हो गए तो मैंने हरीश भाई से पूछा संगम युग टैक्सी कैसे हुआ, समझ में नहीं आया। बोला स्वामी भाई मुंबई की टैक्सी ऊपर से पीला होता है, नीचे से काला होता है, पीला अर्थात सतयुग, काला अर्थात कलयुग, आप बीच में बैठे हो, संगम युगी हुए कि नहीं? मैंने कहा हो गए। हर
हर चीज देखें तो मुझे बाबा और बाबा का ज्ञान बाबा की सेवा अगर नजर आने लगी. यू आर कर्म योगी. द फर्स्ट स्टेज इज दिस. काफी समय तक इस पर अभ्यास करना जरूरी है. ठीक है. द सेकेंड स्टेज जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है. ओके. सो द फर्स्ट स्टेज इज कर्मयोग. द सेकेंड स्टेज जिसको हम लोग कहते हैं राज योग अर्थात संबंध जोड़ना. राज के दो अर्थ होते, एक होता राजा और एक राज होता है द सीक्रेट रहस्य. तो अगर मैं आपसे पूछूंगा हमारे राजयोग में क्या रहस्य है, अगर काफी भाई बहने कहते मैं आत्मा हूं, ये कोई रहस्य नहीं है, हर शास्त्र में लिखा हुआ है. मुझ आत्मा के पिता शिव बाबा हैं, ये भी कोई रहस्य नहीं है. द्वापर युग से आपने और हमने मिलकर कितने शिव के मंदिर बनाए, बनाए कि नहीं बनाए. राज या रहस्य उसको कहा जाता है जो अभी तक मुझे नहीं पता थी, अब मुझे पता चल रही, उसको हम रहस्य कहते हैं. किसी ने मुझे कहा कि हम मनुष्य से देवता बन रहे, ये रहस्य, ये लक्ष्य का रहस्य है. अभी संगम युग चल रहा है, ये समय का रहस्य है. हम 84 जन्म लेते हैं, हम मनुष्य योनि में जाते, जानवर में नहीं जाते, ये जन्मों का रहस्य है. लेकिन योग के मामले में क्या रहस्य है? जो यहां बाबा के अधिकतम बच्चे बैठे हैं, आप सबको रहस्य पता है, कोई नई बात नहीं है. लेकिन जो सेंटर पर जो पीएमटीवी आस्था संस्कार सुनकर आ रहे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कर्म योग के बाद उनको वो रहस्य समझाएं. और जब वो रहस्य उनको समझ में आता है, देन उनको मेडिटेशन और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी. सो व्हाट इज द रहस्य? कैन वी सी दैट? हां. देखिए रहस्य क्या है, और वो है बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ष्म वतन. सो द फर्स्ट स्टेज हम लोग स्थूल साकार लोक, और दूसरा जो है वो सूक्ष्म वतन. और सूक्ष्म वतन में जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वो है सूक्ष्म शरीर, द एंजेलिक वर्ल्ड, फरिश्तों की दुनिया. ये रहस्य है. पूरे 5000 वर्ष में ये नहीं मालूम था. शिव बाबा ने आकर एक ऐसा लोक के बारे में बताया. और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे जो बात है, और वो है द गार्डियन एंजल, एंड दैट इज ब्रह्मा बाबा. जब हम भाई बहनों को क्लास कराते हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्रह्मा बाबा के बारे में बहुत अच्छी तरह हम बताएं. यज्ञ का इतिहास दादियों का जो है, एटलीस्ट उनको किताब दे दें. जो इंटरेस्टेड होते हैं ना, ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, उनको पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है. अब इसमें रहस्य क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना जरूरी है. राइट. 18 जनवरी 1969 को जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, तो इस बहुत सुंदर रहस्य को सभी ने समझा, महसूस किया. कौन सा रहस्य था? राइट. दूसरा जो स्टेप ऑफ मेडिटेशन है, वो है फरिश्ता स्वरूप. और इस फरिश्ते स्वरूप में जो रहस्य है वो ये है, द सीक्रेट बिगिंस हियर. ये राज है. और राज क्या है? उस फरिश्ते से सर्व संबंध जोड़ना. हम लोग आज तक भक्ति मार्ग में भी गीत गाते थे, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो. राइट. ये गीत गाते थे. लेकिन ये रहस्य आज हमें अगर समझ में आता है, तो कैसे समझ में आएगा? मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा. मैं चाहता हूं आप सभी जो है ना, वो टीवी को नहीं देखते हुए मुझे देखिए. राइट. अच्छा देखिए, ये क्या है? मोबाइल. अब देखिए, ये मोबाइल एक साधन है जिसके द्वारा मैं योग करूंगा. तो सपोज किसके साथ मेरा योग होगा? मेरे लौकिक पिताजी के साथ. ठीक है. मेरे लौकिक पिताजी यहां से करीब 800 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर दूर केरला में है. राइट. जैसे हम लोग अपने पिताजी को पापा कहते हैं, अब्बू कहते हैं, अब्बा कहते हैं, मलयालम भाषा में मैं अपने लौकिक पिताजी को अच्छन कहता हूं. क्या कहता हूं? थोड़ा मलयालम तो सिखाऊं ना मैं आपको. क्या कहते हैं? अच्छन, ACHAN. तो मैंने ना अपने मोबाइल में क्या किया पता है, उनका नाम नहीं स्टोर किया, मैंने अच्छन स्टोर किया. और पहला नाम है, AC है, तो सबसे पहले मेरे पापा का ही शुरू होता है. तो अब सपोज मेरे पापा लौकिक पिताजी केरला से फोन करते हैं, तो जैसे ही फोन करते हैं तो मुझे मोबाइल में दिखाई देता है पापा कॉल कर रहे हैं. तो मैं फोन करता हूं. अब जब मैं फोन कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, जब मैं फोन कर रहा हूं तो मैं यहां बैठा हूं, मेरे पिताजी 1000 किलोमीटर दूर. ये योग है. ठीक है. तो वहां से वो कहेंगे, स्वामी ओम शांति. तो मैं कहूं, अच्छा ओम शांति. तो पूछेंगे कहां हो? तो मैं कहूंगा शांतिवन में हूं. अच्छा वहां क्या कर रहे हो? तो मैं कह रहा अभी ब्रह्मा भोजन खा के आया हूं, अभी लेक्चर ले रहा हूं. क्या सेवा थी? यही पूछेंगे. अब ध्यान से सुनना, जब मैं यहां से फोन कर रहा हूं ना तो मैं अपने लौकिक पिताजी के स्वरूप को एकदम सामने देख रहा हूं. यस और नो? यस. काफी जो नए भाई बहने आते हैं वो कहते हैं आपका राज्यों का मेडिटेशन इज विजुअलाइजेशन. नो, इट्स नॉट विजुअलाइजेशन. प्लीज, अगर कोई कहता है कि मैं अपने पिताजी को विजुअलाइज कर रहा हूं, नो, मैं अपने पिताजी को मन और बुद्धि के द्वारा देख रहा हूं. कोई मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई काल्पनिक चीज नहीं कर रहा हूं. मेरे पिताजी 1000 किलोमीटर दूर है, यहां बैठकर मेरा दिस इज मेंटल योगा. मन बुद्धि के द्वारा उनको देखते हुए मैं बात कर रहा हूं, संबंध जुट रहा है. यस और नो? यस. अब देखिए दूसरा फोन आता है, दूसरा फोन आता है ना तो उसमें नंबर लिखा है, किसका नाम नहीं स्टोर किया, तो मुझे नहीं पता कौन है, तो मैं फोन उठाता हूं तो वहां से फोन होता है, स्वामी भाई ओम शांति. मैं कहता ओम शांति. स्वामी भाई बोल रहे हैं? मैं कहता हां स्वामी भाई बोल रहा हूं. स्वामी भाई मैं राजेश भाई बोल रहा हूं. अब मेरी बुद्धि ढूंढती है स्वरूप राजेश भाई को, कौन से राजेश भाई, हमारे यज्ञ में इतने सारे राजेश भाई हैं. तो मैं पूछता हूं राजेश भाई कौन राजेश भाई? स्वामी भाई मैं दिल्ली से बोल रहा हूं. अच्छा अच्छा अच्छा. अब मेरा जो मुंबई छूट जाता है सीधे दिल्ली में आ जाता. अब दिल्ली के राजेश भाई तो कहते स्वामी भाई शायद आपने मुझे पहचाना नहीं. अब कैसे बोलूं कि मैंने आपको नहीं पहचाना, वो मर्यादा थोड़ी ना होती है. तो मैंने कहा नहीं ठीक है राजेश भाई बोलिए किसके लिए फोन किया. बोले स्वामी भाई मुझसे एक छोटा सा काम था. हाँ हाँ आप वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वो जो किए थे ना. अच्छा अच्छा ठीक है फिर मैं मेरा ना बुद्धि वो स्वरूप को ढूंढता है, ये कौन है राजेश भाई, कौन है राजेश भाई. फिर से पूछेंगे स्वामी भाई शायद आपने मुझे पहचाना नहीं. तो मैं कहूंगा सच्ची बात बताऊं राजेश भाई, आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई यू, आई एम सो सॉरी. तो राजेश भाई कहेंगे स्वामी भाई मैं आपको बताता हूं, पिछली बार जब आप आए थे ना दिल्ली तो मैं ही तो एयरपोर्ट इतना बड़ा आपका ना बुके से स्वागत किया था. अच्छा फिर मैंने ही अपनी गाड़ी में आपको ओम शांति रिट्रीट सेंटर लेकर गया था और जैसे ही मुझे बुद्धि में स्वरूप आ जाता है राजेश भाई ओम शांति कैसे हो. दिस इज संबंध, दिस इज रिलेशनशिप, दिल से दिल की भाषा, ऐसा लगता है जाके गले मिल जाए उनसे, है ना. वाह, दिस इज कम्युनिकेशन. ये कम्युनिकेशन कब हुआ? जब मैंने वो राजेश भाई के स्वरूप को पहचाना और फिर दिल से दिल की बातें हुई. और क्या किया, बातें ही तो की ना, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन. उसी तरह जब हम कहते हैं, कितनी वंडरफुल बात है राइट, 18 जनवरी 1969 के बाद जब अव्यक्त वाणी अगर आप पढ़ेंगे तो बाबा ने कहा आज तक मैं शरीर के बंधन में था, आज मैं शरीर के बंधन से छूटा हूं, जो बच्चा चाहिए जब चाहिए मेरे साथ संबंध जोड़ सकता है. This is the रहस्य. और ये रहस्य को समझना बहुत बहुत जरूरत है. मैं आपको एक दो एग्जाम्पल बताता हूं. मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है, इससे भी अच्छे चित्र आप बना सकते हैं. मैंने वो पेनड्राइव 2 प्रेजेंटेशन दे दिया, तीसरा प्रेजेंटेशन भी मैं दे दूंगा तो आप भाई जी से ले लेना. देखिए सबसे पहला संबंध, तीन जो संबंध है, पिता, शिक्षक और सद्गुरु का. तो जैसे ही मैं कहता हूं आप मेरे पिता हो तो महसूस करना परमधाम से शिव बाबा धीरे से उतर रहे हैं, वो सूक्ष्म वतन में वो फरिश्ता, वो फरिश्ते के ब्रुकुटी के बीच में शिव बाबा. अब जैसे मैं अपने केरला में लौकिक पिताजी से बात करता हूं वैसे ही मैं सूक्ष्म वतन में उस बाप दादा से बात कर सकता हूं. हमारे बिहार वाले भाई बताइए, आपके बिहार जाने के लिए 1 सेकंड, केरला जाने के लिए 1 सेकंड, बताइए सूक्ष्म वतन में जाने के लिए कितना समय लगेगा. वाओ, मुंबई से पूछा तो एक भाई ने कहा मुंबई से जल्दी हम जाएंगे क्योंकि वहां तो ट्रैफिक नहीं होती ना, वो तो अपवर्ड जर्नी है ना. यस, 1 सेकंड. दिस इज नॉट विजुअलाइजेशन. विजुअलाइजेशन इन द सेंस क्या है, लोगों को लगता है विजुअलाइजेशन मतलब काल्पनिक, मैं उस आधार पर बता रहा हूं. इट्स नॉट काल्पनिक, इट्स एक्चुअल संबंध राइट. अब आप उस पिता को देखो और आप क्या करो, जो पिता से बात करना है वो बातें करो, कम्युनिकेट, अपने दिल की बात सुनाओ. हम लोग जो होते हैं ना बहुत कड़क हो जाते, बात ही नहीं करते. बात करना बहुत बहुत जरूरी है. और काफी बार भट्टी में जब लोगों को नींद आती है ना तो मुझे उसका रहस्य पता है, वो इसलिए उनको नींद आती है क्योंकि वो बाबा से बात नहीं कर रहे. अब जैसे एक दिन आपने बहुत सेवा की, सेवा करने के बाद, मैं बहनों की बात कर रहा हूं फिर भाइयों पर आता हूं, बहन जी बहुत सेवा किए, जब आप उस जैसे ही वो अपने लौकिक घर पहुंचते ना तो आपकी पड़ोसी सखी है ना वो आपको कहती है बहन जी मुझे आपसे बात करना है. तो आप क्या अपनी सखी को कहोगे, ठीक है मैं कल बात करूंगी ना, आज मैं थोड़ा थक गई हूं, नहीं 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 प्लीज ना, आप जरा मुझसे बात करो ना, राइट? तो वो कहती कितनी बार कहती हूँ सेंटर पे आओ ना, नहीं नहीं सेंटर मेरे पति अलाउ नहीं करते ना, आप ही मेरा प्रॉब्लम को सॉल्व करो ना। तो आप कहते अच्छा सुनाओ, अब आप बहुत थक गए हो, वो सखी आपको कुछ बातें बताती है, आप बहुत थक गए हो, ऐसा तो नहीं होता वो बोल रही और आप उनके सामने सो गए, ऐसा कभी हुआ क्या? नहीं, थके हो तो आप अपनी सखी को क्या समझाओगे, ठीक है काम करती हूं कल मैं बात करती हूं ना, ठीक है मैं आपकी बात सुन ली, फिर घर जाकर आप सोते हो। दिस इज व्हाट हैपेंस ना। अच्छा मैंने काफी देखा भाइयों के साथ, खास करके हमारे अभिमन्यु को मैंने देखा है, हमारे जो कॉलेज के बच्चे सारा रात फोन पर बात करेंगे, कभी देखा हमारे भाई को फोन करते करते सो गए, कभी हुआ क्या? कभी नहीं होगा, ये फोन पे घंटे घंटे रात में बात कर रहे हैं और दूसरा दिन सुबह स्वामी सर के क्लास में खर्राटे मार के सो रहे हैं, उनको पता है स्वामी सर को क्रोध आता नहीं है, आराम से मेरे क्लास में सोते रहते। आज तक कभी हुआ है बहुत थके आपको फोन आया और आप सो गए? हो ही नहीं सकता है। और यहां बाबा के मेडिटेशन बैठे टक बात नहीं कर रहे हो, अपने दिल की बात सुनाओ। और इस मामले में बहनें बहुत पास हो जाते हैं ना, सारी दिल की बातें बाबा को सुनाते रहते हैं और बाबा दीवाना हो जाता बहनों का, आप आगे बढ़ो, ज्ञान का कलश वलश उठा के दे देता है एडमिनिस्ट्रेटिव, और भाई लोग बात ही नहीं करते। इस मामले में इतने बाबा दीवाने हो जाते माताओं और बहनों का, दिस इज द सीक्रेट। बस अपने दिल की बात भाई लोग भी सुनाना आरंभ करो, दैट इज अ सीक्रेट। अब देखो मैं कैसे जोड़ता हूं पिता के साथ संबंध, मैंने बहुत सारे फोटोज लगाए हैं, देखो छोटा बच्चा बन जाओ पिता के ना कंधे पर चढ़ जाओ, इट्स दैट रिलेशनशिप, राइट? अब बस चित्र को देखते जाइए, एक एक अच्छी अच्छी कहानी बनाते जाइए, बच्चे पिताजी के साथ घूमो फिरो, अरे वाह आराम से रिलैक्स करो, जहां लेकर जाना पिता को लेकर जाओ, सच अ ब्यूटिफुल रिलेशन। इस संसार में ऐसा कोई है ईश्वर के साथ कैसे संबंध जोड़ना बता सकता है क्या? नहीं, दैट्स अ ब्यूटी। दूसरा है शिक्षक, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, तो शिक्षक कैसे होता है? तो शिक्षक का स्वरूप टाई सूट बेल पहनकर, ऐसे भी शिक्षक का स्वरूप। आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है ना तो एक काम करना, बहुत सिंपल बात है, बहुत सारी माताएं बहने मेरे पति ज्ञान में नहीं चलते, बच्चे सुनते नहीं, मेरे को ये प्रॉब्लम है, एक काम करना पिताजी को लेकर आना, शिव बाबा पिता के स्वरूप में आ गया, अपनी प्रॉब्लम सुनाना, फिर शिक्षक के स्वरूप में ले आना उनको प्रॉब्लम सुनाना, फिर सदगुरु को लेकर आना उनको प्रॉब्लम सुना देना। बस अपनी दिल की बात अपनों को नहीं सुनाओगे तो किसको सुनाओगे? इतना सिंपल है राजयोग, बातें करना, दिल की बात। हम लोगों से कह रहे हैं, हम उस फरिश्ते से कहें, दैट्स अ ब्यूटी। अब शिक्षक देखो, शिक्षक का भी फोटोज, हाँ पढ़ा रहा है मुरली के समय पर आप देखो, राइट? अलग अलग स्वरूप में उसको देखो, कैसे शिक्षक हो सकता है, बहुत सुंदर। तीसरा है सदगुरु, आप देखते रहना स्लाइड, सदगुरु। बचपन से मैंने सदगुरु का कैसे स्वरूप बनाया है, सदगुरु बैठे दाढ़ी मूछ लेकर, है ना, मेरा तो स्वरूप यही बनता है। अब आप देखो शिव बाबा आ गए वो फरिश्ते में, अब वो फरिश्ता एंजेलिक फरिश्ता है, अ बॉडी विच इज मेड अप ऑफ लाइट, अब जैसा स्वरूप करना चाहे आप कर सकते। तो मुझे कुछ सदगुरु अच्छे लगे, देखिए कैसे है, हाँ देखो हमारे ये सदगुरु हैं, शिव बाबा के प्रकृति के बीच में, हमें ये स्वरूप अच्छा लगता है। अपने दिल की बात बताओ और महसूस करो सदगुरु जो है वरदान दे रहा है। कुछ और सदगुरु मुझे बहुत पसंद आते हैं, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग, मेक इट वेरी क्रिएटिव, मेक इट वेरी ह्यूमरस। कभी कभी बीकेस बहुत सीरियस हो जाते हैं, मैं आत्मा शांत स्वरूप एकदम सीरियस है ना, तो गंभीरता और रमणीकता का बहुत सुंदर बैलेंस होना चाहिए। हाँ जिस समय आपको गंभीर होना है गंभीर होइए, जिस समय रमणीक होना रमणीक होइए। लेकिन पीपल हु आर स्पिरिचुअल ना, दे मूव टुवर्ड्स फ्रॉम हैप्पीनेस टू आनंद, आनंद में आप आ रहे हैं, मतलब दैट इज द राइट टेक्निक ऑफ राजयोग मेडिटेशन। देखिए और देखिए, हाँ सदगुरु। और इसका मैंने देखा है इतने भाई बहनों ने इतना वंडरफुल अनुभव किया, और इसलिए आप देखते हैं जब आप ज्ञानमृत या कोई ये वर्ल्ड रिन्यूअल देते हैं तो आपको सबसे अच्छा पढ़ने में कौन सा अच्छा लगता, अनुभव? मैं ऐसे जा रहा था मुझे वो प्रॉब्लम हो गई, तो आप वही पढ़ते हो ना आर्टिकल। अब वो मुकेश भाई से पूछना पड़ेगा कौन सा इंटेलिजेंस चाहिए जो आर्टिकल पढ़ते, मुझे तो पढ़ने में थोड़ा अनुभव, सबको पढ़ना बहुत अच्छा लगता। मैं आपको एक छोटा सा अनुभव बताता हूं, अब आप इसको ना जो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपीरियंसिंग मेडिटेशन इज, बाबा का एक फोटो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बैठा हूं ना चिंता मत करो, मैं बैठा हूं तो यूज करो ना बाबा को। अरे मेरा पिता है, मैं पिता के साथ मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा तो किसके साथ करूंगा। एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस मेडिटेशन। हमें याद आता है एक बार हम दिल्ली में सेवा कर रहे थे। दिल्ली में सेवा करने के बाद मेरी ट्रेन थी और एक बहुत सुंदर ट्रेन जो चलती है ना, दैट इज राजधानी, जो करीब 8 बजे दिल्ली से चलती है, 6:30 साढ़े 6 बजे तक अबू रोड टच कर जाती है। तो मैं दिल्ली में पूरी सेवा करने के बाद मेरा वो टिकट उसमें था। 1 घंटे पहले वहां की बहन जी ने कहा, स्वामी भाई वी वेरी सॉरी टू टेल यू, आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ। मैंने कहा अच्छा, आप क्या करेंगे? तो बोला मैं फ्लाइट वाइज देख रही हूं, तो फ्लाइट वाइज जयपुर जाना है, उदयपुर जाना है। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं जमेगा, ये ट्रेन इतनी अच्छी ट्रेन है, 6:30 साढ़े 6 बजे अबू रोड टच कर जाती है, 10 बजे मेरी सेवा है, सो दिस इज अ वेरी गुड ट्रेन। तो बोला बहन जी क्या करोगे? तो मैंने कहा अब एक काम करो, एक भाई को भेज दो और मुझे ट्रेन में चढ़ा दो, फिर बाबा बैठा है ना। अब मैं जब मैं गाड़ी में वो गाड़ी चला रहे थे, मैं धीरे से बाबा को देखा, परमधाम से शिव बाबा उस फरिश्ते में एकदम सामने ले आया, पिता टीचर सदगुरु। मैंने कहा देखो आई एम ऑन गॉडली सर्विस, ये शरीर बहुत थक गया है, आपने मुझे सर्विस पर बुलाया, मैं आ गया हूं, अब ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप मुझे एक बर्थ दो, अब कैसे करो दैट इज योर प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैं आया और मुझे ये ना ये अनुभव अपने ब्राह्मण जीवन के बहुत 5 या 6 साल में हुआ, तो उस दिन मुझे ये लगा कि एक्चुअली वर्क्स। और हमारे यज्ञ में आप सबके अनुभव सुनेंगे ना तो आप लगेगा बाप रे बाबा सभी बच्चों को इतना अनुभव करा था, मेरा तो वह वहां से शुरुआत किया, मैं शुरुआत का अनुभव बता रहा हूं। तो मैं जब ट्रेन में बैठा तो इट वॉज 2-टायर AC ट्रेन था, तो जब मैं ट्रेन में चढ़ा तो मुझे पता होता सीट नंबर 1 जो होता ना वो टिकट एग्जामिनर का होता है, तो मैं वहां बैठ गया और मैं बाबा को देख रहा था। मैंने कहा बाबा आप मदद करना, आपको मैं एक फिल्म का जिक्र करता हूं, वैसे बाबा मना करते हैं फिल्म के लिए, लेकिन एक फिल्म मैं बहुत रिकमेंड करता हूं कि कभी टाइम मिलेगा तो आप वो देखना, और उस फिल्म का नाम है लगे रहो मुन्ना भाई। जिन्होंने नहीं देखी है नहीं देखना, लेकिन जिन्होंने देखी है वो देखना। उसमें क्या होता है, ये जो मुन्ना भाई होता है ना वो बापूजी को याद करते 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 ऐसा होता है कि बापूजी किताब से बाहर आ जाते राइट, और इनको कहीं पे भी प्रॉब्लम होता है ना तो ये मुन्ना भाई क्या करते हैं, बापूजी को याद करते हैं, तो बापूजी पीछे आकर खड़ा हो जाता है और वो जो सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं ये बापूजी से पूछता है, बता मैं क्या जवाब दूं। अगर बाहर के लोग अगर ये फिल्म देखेंगे ना तो उनको लगेगा इट्स अ फिक्शनल स्टोरी, लेकिन जो बाबा का बच्चा अगर वो फिल्म देखेंगे ना ये कहेगा दिस इज रियल राजयोग, दिस इज योग जो मुन्ना भाई बापूजी के साथ कनेक्ट करता है। तो मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगती है, मैंने भी उसी समय से धीरे से मैंने कहा मैं भी स्वामी भाई हूं है ना, बापूजी आप आ जाओ। मैंने शिव बाबा को है ना पिता के रूप में बिठा दिया, मैंने कहा वो टिकट एग्जामिनर आ रहा है तू कुछ कर, अप्लाई करते ना, और टिकट एग्जामिनर कर रहा तो मैं बापूजी को देख रहा हूं, उसको बापूजी नहीं दिखाई दे रहे लेकिन मुझे तो दिखाई दे रहे ना तीसरे नेत्र से। मैंने कहा बापूजी वो नजदीक आ रहे हैं संभाल लेना, मैं इस शरीर को रेस्ट चाहिए। और जैसे ही वो टिकट एग्जामिनर आए, उस समय ये हार्ड टिकट होती थी, मैंने टिकट दिया, मैंने कहा बापूजी संभाल लेना। उसने टिकट देखा, बोला ये तो भाई ये तो कंफर्म नहीं हुआ है। मैंने कहा मुझे पता है लेकिन आप कुछ कर सकते हो? बोला बिल्कुल नहीं। तो मैंने बापूजी को देखा क्या कर रहे हो आप बैठकर, हेलो बैठे तो पीछे मुझे याद करो मैं बैठा हूं, सर्वशक्तिमान बोलते रहते, ये तो छोटा सा इंडियन रेलवे से संभाल नहीं सकते। अब उसने एकदम झटका दे दिया मुझे, बोला एक काम करो यहां पर आप बैठ नहीं सकते, कोई टिकट खाली नहीं है। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, वो आपको देखना है, मैंने इमीडिएटली बापूजी को देखा, इसको करना है, मैं क्या करूंगा। अब धीरे से टिकट एग्जामिनर गए, मैंने बापूजी को बोला मैं क्या करूं बताओ, शरीर थका हुआ है। तो इमीडिएटली जैसे मुझे फील हुआ सामने ना मैंने एक परिवार को देखा, तो 2-टायर AC तो 4 सीट होती है, मात पिता और 2 बच्चे, बच्ची करीब 10वीं में या 9वीं में पढ़ती होगी, बेटा करीब 11वीं 12वीं में पढ़ता होगा, मुझे वो अंदाज लगा। तो मुझे जैसे फीलिंग हुआ कि उनसे जाकर पूछो, मैंने धीरे से गया, मैंने उस भाई साहब, तो मेरा इंटरेक्शन विद द टिकट एग्जामिनर ये सुन रहे थे भाई साहब, तो मैंने कहा भाई साहब एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। तो बोला यस। मैंने कहा मैं ना थोड़ा थक गया हूं तो मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, तो अगर आप परमिशन देंगे तो आप भोजन वोजन करने के बाद ये जो नीचे जो है ना वहां पर मैं अपना बेडशीट बिछा दूंगा और मैं वहां सो जाऊंगा, एंड आई गॉट अ टिकट, बस कंफर्म नहीं हुई है बट आई पेड फॉर इट। और फिर धीरे से उन्होंने मुझे देखा और कहा नो। मैंने कहा प्लीज सिंपल हम्बल रिक्वेस्ट। बोला नो मीन्स नो। फिर मैंने बापूजी को देखा, भी मैं क्या करूं बताओ, बैठे हो ना आप कुछ करो। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं वहां जाकर पूछूं, जैसे ही मैं आने लगा ना तो उन्होंने कहा रुको। मैंने कहा यस। मैं पीछे मुड़कर कहा, बोला मैंने कहा कि आप नीचे नहीं सो सकते, मैं आपको अपना एक बर्थ दूंगा। मैंने कहा नहीं, मैंने बर्थ के लिए तो पूछे ही नहीं। बोला नहीं मैं आपको बर्थ दूंगा, आप नीचे सो ही नहीं सकते, ना जान ना पहचान, बापूजी मेरा मेहमान, उनका मेहमान, सॉरी सॉरी। कुछ नहीं. तो आई वॉज वेरी सरप्राइज. मैं आया, मैंने कहा नहीं नहीं आई डोंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब. अगर आप तो चार लोग हो ना, तो उस पिताजी ने कहा ये जो बच्ची है ना, ये बच्ची मेरे साथ सो जाएगी, आप डोंट वरी डोंट वरी. तो मैं इधर आया, भोजन किया, भोजन करके मैं जस्ट वेट कर रहा था, तो भाई ने धीरे से कर्टन खोल के देखा, बोला आपका भोजन हो गया? मैंने कहा यस सर. बोला आप आ जाइए, आप सो जाइए, आपको अगर सोना है. तो मैं गया तो मैंने पता क्या देखा, वो ऊपर वाला बर्थ उन्होंने अच्छी तरह से तकिया लगाया, चादर बिछाया, उसमें बेडशीट बिछाया और कहा आपके लिए बर्थ तैयार है, आप जाकर सो जाइए. मैं आराम से सोया. बापूजी को तो इतना प्यार से दिल से क्या थैंक्स करूं, एकदम गले लपके क्या बापूजी क्या मिले. इतनी खुशी, इतना प्यार. लेकिन जब मैं उतरने के बाद ना, मैं ये सोचने लगा कि एक्चुअली हुआ क्या था. कभी कभी बाबा मुरली में कहते हैं ना कि बच्चे अगर आप भाषण नहीं दे पा रहे हो ना, लेकिन आप में इतनी लगन है और अगर आप इतना प्यार से मुझे याद करते हो, तो मैं आप में प्रवेश कर आपके द्वारा भाषण कराऊंगा. उन सभी लोगों के लिए जो आज तक भाषण नहीं किए, मैं उनके लिए बता रहा हूं. टेक्नोलॉजी, इतना दिल से बाबा को याद करो. और एक्चुअली पता, अगर हम इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे ना, तो उस समय एक्चुअली हुआ क्या होगा पता है? एक्चुअली उस समय बाबा इतने प्यार से उन पर एक ऐसा वाइब्रेशन दिए कि वो क्या बोल रहे हैं किसी को पता भी नहीं होगा. दूसरा दिन सुबह उठेंगे तो मैं तो उतर गया था, बिकॉज दे सो रहे थे, मैंने उनको डिस्टर्ब बहुत थैंक यू सब किया. लेकिन दूसरा दिन मैं जब निकल रहा था, तो मैंने यही महसूस किया कि दूसरा दिन वो आपस में चर्चा करेंगे, कल क्या हुआ था पता नहीं, कुछ याद भी शायद नहीं होगा. दैट इज द ब्यूटी. बाबा इतने बच्चों को अनुभव कराते. तो हर एक संबंध से हमें याद करना है. बहुत सारे अनुभव हैं, अगर हम बाबा के बच्चों का सुने तो एकदम शास्त्र बन जाए. सदगुरु, चौथा संबंध है दोस्त का, राइट? अब देखो, हर एक का दोस्त अपनी तरह होता है. छोटे बच्चे का दोस्त छोटे बच्चे की तरह, बड़े का दोस्त बड़े की तरह. तो खुदा दोस्त के साथ जो संबंध जोड़ना है, राइट? यस. आप पूछेंगे दोस्त के साथ क्या बातें करना है, तो आप हमारे स्टूडेंट से सुन लो. सारा दिन व्हाट्सएप करते रहते हैं, पूरा दिन. तो व्हाट्सएप में क्या करते हैं? व्हाट्सएप, व्हाट्स हैपनिंग नाउ. हर मिनट बाबा से बोलो, खुदा दोस्त से बताओ कि आप क्या कर रहे हो. बाबा मैं अभी लेक्चर ले रहा हूं, आज रात को मुझे ट्रेन से निकलना है, कल जामनगर की सेवा है, बाबा आप साथ में रहना. कीप ऑन स्पीकिंग. कितना ब्यूटीफुल है ये बात, राइट? संबंध जोड़ना खुदा दोस्त के साथ. नेक्स्ट, हां, पांचवा संबंध, साजन और सजनी का. वंडरफुल संबंध. एक बार मैं भट्टी करा रहा था, तो एक बहन जी ने बहुत अच्छा अनुभव सुनाया. उन्हें कहा स्वामी भाई, भक्ति मार्ग में ना मैं बहुत उपवास करती थी. और उपवास किसका करती थी? मेरी मां मुझे कहती शिव जी का उपवास करो तो आपको बहुत अच्छे साजन मिलेंगे. तो बहुत प्यार से शिव जी का उपवास करती थी, राइट? बोला और देखो क्या वंडरफुल हुआ कि मुझे सत्यम शिवम सुंदरम मुझे साजन की तरह मिल गए. मैंने उस बहन जी को कहा अच्छा आप कैसे संबंध जोड़ते हो? बोला स्वामी भाई पता मैं क्या करती हूं? मैंने कहा क्या करते हो? बोलती मैं महसूस करती हूं कि वो हिमालय के पर्वत में माउंट कैलाश में वो सूक्ष्म वतन की तरह दिखता है. मैंने कहा हाँ वो तो ठीक है. बोला मैं बहुत सूक्ष्म शरीर से जाती हूं, बहुत सुंदर है ना सजनी के स्वरूप में जाती हूं, वहां जाती हूं. मैंने कहा अभी आगे बताओ ना क्या करते हो. बोला वहां से मैं महसूस करती हूं परमधाम से शिव बाबा उतर रहे हैं, वो माउंट कैलाश में जो होते हैं वहां पर शंकर जी, अब वो तो भक्ति में शंकर जी को याद करते हैं, शंकर जी मेरा हैंडसम साजन शिव बाबा उसमें उतर गए. फिर मैंने कहा बहन जी आगे बताइए ना क्या करते हो. बोला मैं सजनी मेरे सामने है ना वो साजन और बीच में कैंडल लाइट और हम लोग कैंडल लाइट डिनर करते हैं. मैंने कहा वाह, अब बताइए अब बाबा किस पर दीवाना होगा. यार ये सजनी कितना प्यार से मुझे याद कर रही है, वो स्वामी भाई भाषण देता रहता है, क्या फायदा उस भाषण का, मार्क्स इस सजनी को मिलेगा. फिर मैंने कहा अच्छा कैंडल लाइट के बाद बस स्वामी भाई कुछ बात नहीं, आंखों में प्यार ही प्यार. दैट इज रिलेशनशिप, साजन और सजनी का संबंध. अब यार भाई लोग को समझ में नहीं आता वो साजन है, मैं कैसे सजनी बनूं. अगर आज भी वो स्वरूप नहीं हो रहा, मतलब आज भी हम वो बॉडी कॉन्शियस में हैं, आज भी मैं शरीर समझकर चल रहा हूं, इसलिए तो बाबा के साथ उस साजन का संबंध नहीं जोड़ पा रहा हूं. हम कितना भी मुरली पढ़ लें सोल कॉन्शियस, लेकिन नहीं जुट रहा ना. मतलब मुझे क्या, मुझे फील करना चाहिए कि मैं तो वो सूक्ष्म शरीर के स्वरूप में करना ना. दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट. अच्छा नेक्स्ट संबंध, हाँ साजन के बाद, हाँ क्या लिखा है जरा रीड करिए. भक्तिवान में गीती गाते हैं तुम ही हो माता पिता तुम ही हो. शिव बाबा आए वो बहुत सुंदर उस एंजल में, अब उसको मां के स्वरूप में देखो ना। हाँ वहां पर अगर आपको मम्मा देखना है, दादी देखना है, जैसे भी करना है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट मां के स्वरूप में। सबसे अच्छा ब्रह्मा मां है वो, तो मां के स्वरूप में उनको अगर आप देखेंगे तो इतना ब्यूटीफुल होगा। और मां के स्वरूप में देखिए, हाँ मां जो है अलग अलग स्वरूप में। और मैं बताता हूं, कभी कभी मुझे लगता है जब बाबा ना डबल तीव्र पुरुषार्थी, अगर डबल फॉरेनर्स की जब इतनी महिमा करते हैं ना, तो हम भारतवासी को लगता है कि बाबा इतनी महिमा क्यों करते। मैं बताता हूं इसका कारण क्या है, क्योंकि ये जो डबल फॉरेनर्स होते हैं ना, डबल तीव्र पुरुषार्थी, इन लोग एंजल्स को बहुत ज्यादा मानते हैं। और जो संबंध हम भारतवासी को समझ में नहीं आता है, उन्होंने इतनी अच्छी तरह समझा और उसका स्वरूप एक गीत में कैसे लेकर आए देखना आप। उन्होंने देखा, इन्होंने जब भोग लगाते ना, तो मुझे याद आता है जब मैं पहली बार जब ये भोग लगाने के लिए, जब दीदी भोग लगाने के लिए बैठते थे ना हमारे सेंटर पे, तो मैं पूछता था ये बहनें भोग कैसे लगाते। तो कुमार था तो मैं भोजन बनाता, बहन भी कहता आप भी भोग लगाना, तो मैं कहता मैं भोग कैसे लगाऊं, व्हाट डू वी डू। लेकिन आप देखेंगे डबल तीव्र पुरुषार्थी ने उनको बाबा को मां के स्वरूप में कैसे याद किया। और अगर आपने ये वीडियो खुद देखा, नए कुमारों को दिखा देंगे ना, उनको कभी ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि भोग कैसे लगाया जाता है, राइट। किस तरह से हम जो भोजन बनाते हैं, राइट, वो आप इतनी अच्छी तरह इसमें गीत के द्वारा महसूस कर सकते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड दिस वीडियो इज डन बाय डबल फॉरेनर्स, बाबा के बच्चे, बहुत सुंदर सा गीत है।
हाँ जी। परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन।
अब देखिए परमधाम से शिव बाबा नीचे उतर रहे हैं, ये शिव बाबा हैं। आप बहुत प्यार से शिव बाबा को भोग के लिए बुला रहे हो, तो देखो कैसे बाबा नीचे उतरते हैं। ये हमारे शिव बाबा हैं, पृथ्वी है।
अनुभव कर तू धन्य बना जीवन, ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल
कर ले मिलन। ओ शिव बाबा वो माँ के स्वरूप में आ गए।
चल कर ले मिलन, अब चल
अब ये फरिश्ता स्वरूप
कर ले मिलन।
अब देखिए आप ये सब है माताएं बहनें भोग लगाने के लिए जा रहे हैं।
प्राप्ति का
अब क्या क्या है आप देखना। अरे वह टोली है, फ्रूट्स है,
समर्पण।
अब देखिए कितना प्यार से भोग लगाएंगे।
आत्मा चल प्रभु को सौंप दे तू सारा।
बहुत प्यार से बाबा के सामने रख रहे हैं, ये सारा सूक्ष्म वतन में चल रहा है।
ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे।
बाबा बहुत प्यार से दृष्टि दे रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं।
देख प्रभु तेरे निकट विराजे, कर ले अभिवादन।
और सभी आत्माओं को अब बाबा साथ में लेकर जा रहे हैं सूक्ष्म वतन से परम धाम की ओर।
परमात्मा से
कैसे लगा, राइट ना। अब देखो एक पहली बार एक कुमार आता है, अगर आप उसको सिखा, बस ये वीडियो दिखा दो, थोड़ा सा समझा दो, उसको समझ में आ जाएगा, अच्छा इस तरह से बाबा को भोग लगाया जाता है, राइट ना। सो दिस इज जो अलग अलग संबंध मां के स्वरूप में। अब जो लास्ट संबंध है, अच्छा अच्छा दिस सॉरी सॉरी ओके। अब लास्ट संबंध है, हाँ कौन सा संबंध है, बच्चे का। हाँ बच्चे के स्वरूप में देखिए या मैं अपना एक पर्सनल अनुभव सुनाता हूं, ये मुझे अनुभव बहुत अच्छा लगता है, काफी बार मैंने ये सुनाया है लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है।
जब मैं 1-1.5 साल का बाबा का बच्चा था ना, तो हर दिन मैं रात को बाबा को लेटर लिखता था, बाबा कल मैं आपके साथ कौन सा संबंध जोड़ूंगा। एक दिन माँ का, एक दिन पिता का, एक दिन दोस्त का, एक दिन अलग अलग संबंध। तो एक दिन मुरली क्लास में ये पॉइंट आई कि आप बाबा को अपना बच्चा बना सकते हो। अच्छा, ये मेरे लिए नई बात थी। तो हमारी टीचर्स बहनें जो होती है ना, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो सबसे पूछने लगे आपके कितने बच्चे हैं, आपके कितने बच्चे हैं। और मैं बैठ के सुन रहा था, 2 लौकिक 1 पारलौकिक, 1 लौकिक 1 पारलौकिक। तो दीदी ने मुझको पूछा, स्वामी भाई आपके कितने बच्चे हैं। ये 2-3 एग्जाम्पल से मुझे बात समझ में आ गई। मैंने कहा, दीदी मेरा 1 पारलौकिक बच्चा है। बोला, वेरी गुड, क्या नाम रखा है। नाम? बोला, अरे बच्चों का नाम नहीं रखा, आज उनका नाम रखे शिव बालक। और उस दिन मैं इतना खुशी में आ गया कि मैं भी पिताजी बन गया हूं, आई हैव बिकम अ फादर। इतना आनंद का अनुभव। अब मैंने रात को मैंने बाबा को लेटर लिखा, बाबा कल ना मैं आपको बच्चे के स्वरूप में याद करूंगा। तो दूसरा दिन जैसे ही हुआ तो बहुत उमंग उत्साह, क्योंकि नया संबंध था। मैंने महसूस किया परमधाम से शिव बाबा उतर रहे हैं, टिंग 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 टिंग, है ना। मेरे साइड पर एक छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा फरिश्ता, उनके ब्रिकुटी के बीच में शिव बाबा चमक रहे। तो मैंने बहुत प्यार से उनको देखा, धीरे से उनको उठाया, नहलाया धुलाया, बहुत प्यार से नाश्ता बनाकर खिलाया। और धीरे बीच बीच में मैं शिव बालक से पूछता था, बालक जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा ख्याल रखेगा ना। और मैं महसूस करता हूं फरिश्ता मुझको जवाब दे रहा, पापा आप निश्चिंत रहो, मैं आपका जरूर ख्याल रखूंगा। और मैं उसको कहता, एकदम आप सपूत बच्चे हो, वेरी गुड, कीप इट अप, कीप इट अप। अब जब ऑफिस में चलने का टाइम हुआ तो मैंने बालक से पूछा, बालक मेरे साथ ऑफिस चलेगा। तो मैंने देखा फरिश्ता कह रहा, पापा आप लेकर जाएंगे तो मैं जरूर चलूंगा। मैंने कहा, लेकर तो जाता हूं लेकिन वहां बिल्कुल मस्ती वस्ती नहीं करने का, मेरे एकदम हाथ पकड़कर चलने का। और मैं महसूस कर रहा हूं मेरे नजदीक वो फरिश्ता बहुत कोमल हाथों को पकड़े, चलिए चलिए चलिए। अब बस में चढ़ा तो संभाल के चढ़ना, संभाल के चढ़ना। अब बस में मुझे एक सीट मिली और मैं सो गया। बस एक स्टॉप में इतनी जर्क के साथ रुकी ना कि मेरा नींद टूट गया, योग वोग तो सब भूल गया था। मैं यही सोचा मुझे कहां जाना है, फिर याद आया अच्छा ऑफिस जाना है। मैं ना वो दरवाजे के एकदम साइड में बैठा था तो इसलिए मेरी सारा अटेंशन वो भीड़ में चला गया। तो सारा भीड़ चढ़ रहा था, मैं उन्हीं को देख रहा था। अचानक मैंने देखा एक बहन जी चढ़कर आ रहे, उनके हाथ में एक छोटा सा बच्चा। तो बचपन से मेरे संस्कार रहे, कोई वृद्ध व्यक्ति होगा या ऐसे बहनों को मैं सीट देता था। जैसे इस मैंने उस बहन को देखा बच्चे के साथ, तो मैंने इमीडिएटली खड़ा हुआ। मैंने कहा, बहन जी बैठेंगे। मैंने अपना सीट दिया तो बहन जी ने कहा, नहीं आप बैठो, आप बैठो। मैंने कहा, बहन जी बैठिए ना। बोला, नहीं आप बैठो, आप बैठो। मेरे साथ और 2 भाई थे तो बहन थोड़ा हिचकिचा रहे थे। तो अब बस चलने लगी, मैं देख रहा था बहन जी थोड़ा इंबैलेंस हो रहे हैं। तो मैंने कहा, बहन जी बैठिए ना। तो बहन जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, उन्होंने कहा, अच्छा तेरे को मुझे इतना ही मदद करना है तो एक काम कर, इस बच्चे को संभाल ले। और ठक मेरे गोद में छोटा सा बच्चा। अचानक याद आया, अरे आज तो मैं शिव बालक को याद कर रहा था। और वो आधा घंटा जो मैंने शिव बालक का अनुभव किया। जैसे आज भी मुझसे कोई पूछता है कि आपको सबसे अच्छा संबंध कौन सा लगता है, तो मैं कहता, बाबा तो हमारे पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं, लेकिन सबसे रमणीक संबंध बालक का संबंध। तो जब यहां से जाएंगे ना तो अकेले मत जाना, अपने साथ वो बालक को लेकर जाना। ऐसा बालक जो जीवन के अंत समय तक आपका जरूर ख्याल रखेगा। और मैंने वहां कहानी को स्टॉप नहीं किया, मैंने पता क्या किया, हर साल जैसे माता पिता अपने बच्चों को बर्थडे मनाते ना, मैं शिव बालक का भी बर्थडे मनाने लगा। और मुझे बहुत खुशी होती बताते हुए कि मेरा शिव बालक अभी 17 वर्ष का हो गया। तालियां तो बजाइए। भले इस जन्म में मैं कुमार हूं, लेकिन कभी भी ना इमोशनल वैक्यूम नहीं होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं भावनात्मक खालीपन। अगर वो भावनात्मक खालीपन होगा ना, तो वो संबंध हमें दूसरा जगह खींचेगा, राइट ना। इसलिए जब मैं उस स्कूल में जाता ना, तो मुझे ये बच्चे बहुत अच्छे लगते, क्योंकि मैं उस शिव बालक के उनको देखते हुए मैं जब जाता हूं तो आई फील सो गुड। तो ये 7 संबंध आपको जो अच्छे लगते हैं, आप उसको जरूर जरूर करना। तो फर्स्ट इज द कर्मयोग, नंबर 2 इज द फरिश्ता स्वरूप, एंड द लास्ट पार्ट इज यस बीज रूप। बस परमधाम जाए, वहां कोई बातें नहीं, बस मैं आत्मा, मुझ आत्मा के पिता परमात्मा, दैट्स इट। संपूर्ण साइलेंस, ये 3 स्वरूप। और काफी भाई बहनों को वो स्वरूप में आने जाना जाकर बहुत देर टिकना बहुत अच्छा लगता है, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। जितना समय आप वहां पर रहकर टिकते हो, एक्चुअली बाबा को सिर्फ याद करते हो, तो सारा विकर्म विनाश होता है और फिर आत्मा संपूर्ण पवित्र बनती है। द फर्स्ट स्वरूप इज कर्मयोग, द सेकेंड स्वरूप हम हल्के होते हैं, लाइट बनते हैं, अपने दिल की बात बाबा से कहते हैं। और तीसरा स्वरूप जो है वो बीज रूप, बीज स्वरूप, परम धाम की अवस्था,
That is the beauty. ये तीनों स्टेप आप धीरे धीरे जरूर प्रैक्टिस करना. तो 20 seconds के अब मैं लास्ट 20 seconds लेता हूं. अपने जहाज को थोड़ा सीधे बिठाइए. सो दिस इज एन अपवर्ड जर्नी. अब मैं हमारे बिहार वाले भाई से पूछता हूं, बिहार जाने के लिए 1 second, मेरे केरला जाने के लिए 1 second, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा से मिलने के लिए 1 second, भाई जी बताइए परमधाम जाने के लिए कितना समय? 1 second. 1 second. अब बस जो सामने वाले आते हैं ना उनसे पूछो, वो कहेगा, फिर उनको परमधाम के बारे में थोड़ा सा बताइए. शायद दूसरे दिन तक आपका वो रेडी हो जाता है. दूसरा दिन आप परमात्मा का परिचय देते हो, दूसरा दिन आप परमधाम के बारे में बताते हो ना. जैसे आप उस घर में गए ना, शारीरिक घर में गए, वैसे आत्मा का घर वो परमधाम. अगले 20 सेकेंड हम रेड लाइट कर दें, इसलिए रेड लाइट किया जाता है. तो रेड लाइट जब करते हैं ना तो आपको वो स्वरूप दिखाई देता है ना. अगला 20 सेकेंड मैं कुछ बोलूंगा नहीं, नो कमेंट्री, ओम शांति बस करूंगा, और 20 सेकेंड के बाद ओम शांति. राइट, तो 20 सेकेंड मन और बुद्धि को उस परमधाम में लेकर, ओनली 20 सेकेंड्स उस परमधाम में लेकर महसूस करना. आपको ना वो चित्र देखना, मैं चाहता हूं कि ये चित्र दिखाते रहे. हाँ राइट, तो एक बार उस नए भाई बहनों का अपने लैपटॉप में या अपने पिक्चर में दिखा दें, ये बहुत सुंदर सा चित्र है. तो जो नए भाई बहने आते हैं ना, तो आप बस उनको ये चित्र ही दिखाते रहो. तो जब चित्र देखते रहेंगे फिर उनको चित्र को धीरे से हटा दो तो उनका मन बुद्धि जहां जाना चाहे वहां जा सकता है. ठीक है, तो मैं चाहूंगा ये चित्र वैसे ही स्लाइड में रहे. तो अगला 20 सेकेंड के लिए हम मन और बुद्धि के द्वारा परमधाम अपना ओरिजिनल घर में जाएंगे और बहुत प्यार से शिव बाबा के नजदीक जाकर उनको बहुत स्नेह प्यार से याद करेंगे और गहन संपूर्ण साइलेंस का अनुभव करेंगे. ओनली फॉर 20 सेकेंड्स मैं ओम शांति स्टार्टिंग में कहूंगा, फिर हम एंड में ओम शांति कहेंगे. चलो वील अगेन गो ओम शांति. ओम शांति. थैंक यू वेरी मच. अगर आपको इस मेडिटेशन के बारे में कोई भी अगर प्रश्न होगा तो आप जरूर पूछ सकते हैं. मैंने अपना ईमेल आईडी वहां दे दिया है, तीनों प्रेजेंटेशन भी है. अब मैं लास्ट एक गीत के द्वारा वाइंड अप करता हूं, ठीक है. और आप सभी का मैं बहुत दिल से धन्यवाद तो करता ही हूं. ड्रामा को भी थैंक्स, हमारे एजुकेशन विंग को थैंक्स, बाप दादा को बहुत बहुत थैंक्स. You were a very wonderful audience. I really enjoyed interacting with you. तो लास्ट में हम आपको एक गीत बजाएंगे. It's a very beautiful film song, right? अगला 4-5 मिनट तक का वो गीत बजेगा. तो मैं चाहूंगा आप बहुत प्यार से, और मैं अपने वीडियो वाले भाई को कहता हूं कि पूरा समय आपको वीडियो स्क्रीन पर ही रखना. ये गीत जो है ना बेसिकली एक फिल्म की गीत है, लेकिन मैं किस भाई ने इसका पिक्चराइजेशन किया मुझे नहीं पता. मैं इस भाई का अगर नाम जानता था तो मैं जरूर पब्लिक में उस भाई को का अप्रिशिएट जरूर करता था. अगर मेरी आवाज भी ये भाई अगर सुन रहे हैं इस गीत के, तो मैं चाहूंगा वो भाई मुझसे कभी ना कभी फोन करके जरूर बताएं कि आपने कि उन्होंने ये किया है. क्योंकि इस पिक्चराइजेशन को आप देखेंगे तो मैं ये महसूस करता हूं कि उस भाई ने कितना प्यार से बाबा के साथ संबंध जोड़कर ये पिक्चराइजेशन किए हैं, जिन्होंने भी किया है. तो ये मैंने काफी जगह ऊपर जब मधुबन में भी मैंने ये गीत सुनाया है. तो अगले 5-7 मिनट तक आप ये संबंधों की जो बात है ना इस गीत से सुनना. किन किन को ये गीत सुनने की बहुत इच्छुक है वो जरा हाथ उठाए. वेरी गुड पांडिमणि भाई जी, 4 or 5 मिनट्स वी विल लिसन डू दिस योग एंड देन वी विल गो.
शांति।